ಕಸ್ಯಾಪಿ ಭಗವಾನೇಶ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಮಯೋಹರಿ ಅಂಶಾಂಶೇನ ಚತುರ್ಧಾಗಾದ್ ಅಂಶಾಂಶೇನ ಚತುರ್ಧಾಗಾದ್ ಪುತ್ರತ್ವಂ ಪ್ರಾರ್ಥಿತ ಸುರೈ ಪುತ್ರತ್ವಂ ಪ್ರಾರ್ಥಿತ ಸುರೈ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನ ಇತಿ ಸಂಜ್ಞಯಾ ಇತಿ ಸಂಜ್ಞಯಾ ಚೈತನ್ಯಮೀಶ್ವರಂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಾಗವತಂ ಕಾ ಜೋ ನವಾ ಸ್ಕಂಧ ಹೈ ಇಸ್ಮೇ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ ಸೆ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಿ ಲೀಲಾಓ ಕಾ ವರ್ಣನ್ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ ಸೆ ಕ್ಯೋಕಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುನಿನೆ ವಿಸ್ತಾರಿತ ರೂಪ ಸೆ ಇಸ್ಕಾ ವರ್ಣನ್ ಕಿಯಾ ಹೈ ಔರ್ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಲೀಲಾಓ ಕಾ ಹಮ್ ಬಾರ್ ಬಾರ್ ವರ್ಣನ್ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಪರ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೆ ಬಾದ ಕೇವಲ ಸಾತ್ ದಿನ ಥೆ ಔರ್ ವೇ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾ ಪೇ ಜಾನಾ ಚಾಹತೆ ಥೆ ತೋ ಇಸಿಲಿಯೇ ಯಹಾಂ ಪೇ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ ಸೆ ಉನ್ಹೇ ವರ್ಣನ್ ಕಿಯಾ ಹೈ ಔರ್ ಅಭಿ ಕುಛ್ ಏಕ್ ಡೇಢ್ ಸಾಲ್ ಪಹಲೆ ಭಕ್ತಿವಿಹಾನ್ ಬುಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೇ ಯೇ ಜೋ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಿ ಲೀಲಾ ಹೈ ಉಸ್ಕಾ ಏಕ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಬುಕ್ ಬನಾಯಾ ಹೈ ರೆಸ್ಕ್ಯೂವಿಂಗ್ ಸೀತಾ ಆಪ್ನೇ ದೇಖಾ ಯೇ ಕಿತಾಬ್ ತೋ ಯೇ ಜೋ ಕಿತಾಬ್ ಹೈ ಜೊ ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರಭುಪಾದ ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಪೇ ಜೊ ಲಿಖಾ ಹುವಾ ಹೈ ವೋ ಇಸ್ ಕಿತಾಬ್ ಮೇ ಹಮೇ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ ತೋ ಇಸೆ ಹಮ್ ಕಲ್ ಬತಾ ರಹೇ ಥೆ ಕಿ ಹಮ್ ಆಜ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಥೋಡಿ ಚರ್ಚಾ ಕರೆಂಗೇ ತೋ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಿ ಸೆ ತತ್ಪರ್ಯ ಬತಾತೆ ಹೈ ಯಹಾಂ ಪೇ ಕಿ ವೇ ಸಬ್ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ಹೈ ಚಾರೋ ಭಾಯಿ ಹಮಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಅಲಗ ಜಗ ಬತಾಯಾ ಹೈ ಕಿ ಯೇ ವಾಸುದೇವ್ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧ ಹೈ ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಂಕರ್ಷಣ ಹೈ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧ ಹೈ ಶತ್ರುಘ್ನ ಔರ್ ಭರತ್ ಔರ್ ಕುಛ್ ಔರ್ ಜಗ ಪೇ ಕುಛ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬತಾತೆ ಹೈ ಕಿ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾರಾಯಣ ಹೈ ಔರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಯೇ ಶೇಷ ಹೈ ಭರತ್ ಶತ್ರುಘ್ನ ಯೇ ಚಕ್ರ ಹೈ ಔರ್ ಭರತ್ ಯೇ ಗದಾ ಹೈ ತೋ ವಾಸ್ತವ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಜೋ ತದಿಯ ಹೈ ಉನ್ಕಾ ಪ್ಯಾರಾಫರ್ನೇಲಿಯಾ ಹೈ ವೋ ಉನ್ಸೆ ಅಭಿನ್ನ ಹೈ ಔರ್ ಇಸಿಲಿಯೇ ಉನ್ಕೆ ಉನ್ಕೆ ಜೋ ಪಾರ್ಷದ್ ಹೈ ಜೋ ತತ್ವ ಹೈ ವಹಿ ಜೈಸೆ ಹಮೇ ಹಮ್ ಜಾನ್ತೆ ಹೈ ಕಿ ಬಲರಾಮ್ ಜಿ ಹಿ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ತದಿಯಾ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ವೃಂದಾವನ್ ಲೀಲಾ ಮೇ ವಿಸ್ತರಿತ ಹೋತೆ ಹೈ ಉಸಿ ತರಹ ಸೆ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೆ ಜೋ ಪಾರ್ಷದ್ ಹೈ ಜೋ ಉನ್ಕೆ ಭಾಯಿ ಹೈ ವೋ ಭಿ ನಾರಾಯಣ ಜಿ ಕಿ ತದಿಯಾ ಹೈ ವೋ ಸಬ್ ಏಕ್ ಹಿ ತತ್ವ ಹೈ ಜೈಸೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ರಾಧಾನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಬತಾತೆ ಹೈ ಕಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಥಿಂಗ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಥಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಜೈಸೆ ವಸ್ತು ಕೋಯಿ ಹೈ ನೀ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ ಮೇ ಜೊ ಹಮ್ ವಸ್ತು ಕಹತೆ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ ವೋ ಭಿ ಸಚೇತನ್ ಹೈ ಯಹಾಂ ಪೇ ಆಜಕಲ್ ಕಲಿಯುಗ ಮೇ ಜೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಿ ಹೋತೆ ಹೈ ವೋ ಭಿ ಅಚೇತನ್ ಹೋತೆ ಹೈ ಉನ್ಕಿ ಜೋ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಕಾ ವಿಷಯ ಹೈ ಉಸ್ಕೆ ಅಲಾವಾ ಬಾಕಿ ಸಬ್ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಅಚೇತನ್ ಹೋತೆ ಹೈ ವೋ ತೋ ವೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜಬ್ ಬಚಪನ್ ಮೇ ಜಬ್ ಯೇ ಚಾರ್ ಭಾಯಿ ಬಡೆ ಹೋ ರಹೇ ಥೆ ತೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಯೇ ಸಬ್ ಭಾಯಿಯೋ ಮೇ ಬಡೆ ಮಿತ್ರತಾ ಥಿ ಪರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಯೇ ರಾಮ್ ಸೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಇನ್ಸೆಪರೇಬಲ್ ಥೆ ಔರ್ ಶತ್ರುಘ್ನ ಯೇ ಭರತ್ ಸೆ ತೋ ಇಸಿಲಿಯೇ ಜಬ್ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ್ ಆಯೆ ಜಬ್ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೆ ಬಾದ್ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮುನಿ ಆಯೆ ने बोला कि मुझे राम चाहिए तो लक्ष्मण भी उनके साथ चले गए और फिर उसके बाद में जब वनवास जाना पड़ा तो कैकेयी ने तो सिर्फ बोला था कि राम को 14 साल वनवास जाना चाहिए और एक तरह से कहा जा सकता है कि सीता माता ये उनकी पत्नी है तो पत्नी का ये कर्तव्य है कि पति के साथ हमेशा रहे इसलिए वो कर्तव्यबद्ध थी जाने के लिए यदि प्रभु श्री राम ने बोला कि जाने की जरूरत नहीं है फिर भी एक तरह से कर्तव्यबद्ध थी, पर लक्ष्मण जी किसी भी तरह से कर्तव्यबद्ध नहीं थे। न तो उन्हें बताया गया था जाने को, न तो उनको जाने की जरूरत थी कर्तव्य के कारण, फिर भी वो क्या कि अगर आप जाओगे तो मैं भी जाऊंगा, क्या कि अगर राम अग्नि में प्रवेश कर लेगा तो मैं भी अग्नि में प्रवेश करूंगा। वो कुछ पूछने या बोलने के पहले आपको समझ लेना चाहिए कि मैंने भी अग्नि में प्रवेश कर लिया है, अगर राम ने जंगल में प्रवेश किया है तो मैंने भी जंगल में प्रवेश कर लिया है। और फिर जब ये सब हो रहा था तो लक्ष्मण बहुत क्रोधित हो गए। इसे मैं कल वर्णन कर रहा था, लक्ष्मण बोल रहे थे कि कौन, कैसा ये अन्याय है, हम क्यों ये अन्याय सहन करें, मानो कि हम शक्तिहीन हैं, हम इसके खिलाफ जाएंगे और मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। तो एक तरह से देखते हैं परशुराम ने उनको कैसे समझाया कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, पर दूसरी ओर से ये जो लक्ष्मण का क्रोध है ये उनके प्रेम का प्रतीक है, जो उनका क्रोध है ये उनके प्रेम का प्रतीक है। भारत में कई बार जब लोग साधु संत आध्यात्मिकवादी के पास आते हैं तो उनकी अपेक्षा होती है कि जो साधु तो हमेशा शांत सौम्य हंसते हुए रहना चाहिए और कुछ गुस्सा नहीं आना चाहिए, कुछ क्रोध नहीं आना चाहिए, एकदम शांत हंसमुख रहना चाहिए, और ऊपर से एक और चीज़ है, कुछ बोलना नहीं चाहिए, सिर्फ आशीर्वाद देना चाहिए। तो जब प्रभुपाद जी भारत में आए और प्रभुपाद जी कई बार अनेक तथाकथित साधुओं का, तथाकथित गुरुओं का खंडन करते थे और प्रभुपाद कभी कभी क्रोधित भी हो जाते थे, तो फिर कई बार भारतवासी को समझ भी आता कि साधु कैसे क्रोधित हो सकता है। पर अगर हम देखते हैं जब रावण हनुमान प्रभु श्री राम की निंदा करता है तो हनुमान का शांत रहते हैं, शांत शांत शांत, हनुमान क्रुद्ध हो जाते हैं और ये उनके ये क्रोध ही उनके भक्ति का प्रतीक है। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं और उस व्यक्ति पर के उस व्यक्ति के चरित्र पर, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर अगर कोई उसकी निंदा करता है, आक्रमण करता है, तो हमारा क्रोध उस व्यक्ति के प्रेम का प्रतीक है। तो भक्ति इज नॉट अ इमोशनलेस प्रोसेस, भक्ति ये भावनाओं से रहित ऐसी विधि नहीं है, भावनाओं का बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में। तो प्रभुपाद जी कई बार क्रोधित हो जाते थे अपने शिष्यों पर भी, कभी कभी जब वे गलती करते थे। पर एक बार एक शिष्य ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद अगर आप हम पे क्रोध हो जाते हैं तो हमें किस चेतना मिलना चाहिए। प्रभुपाद जी क्या बोले, आपको स्वयं को बहुत भाग्यवान मानना चाहिए, खुद को बहुत भाग्यवान मानना चाहिए। क्यों? ओके, इस भौतिक जगत में इतनी सारी जीवात्माएं भटक रहे हैं और अनेक जीवात्माएं गलत कार्य कर रहे हैं, पर उनको कोई डांटने वाला नहीं है। अगर बाहर लोग शराब पीते हैं, नशा लेते हैं, अवैध संग करते हैं, सब कुछ करते हैं और वो लोगों कोई डांटने वाला नहीं है, अगर हम एक दिन सुबह मंगल आरती के लिए उठते नहीं तो हमको डांट मिलती है। अरे ये क्या बात हो गई, इतना मैं पहले से कर रहा हूँ, क्यों डांटते हैं मुझे। तो प्रभुपाद जी क्या बोले कि समवन केयर्स फॉर यू सो मच दैट ही वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम गोइंग टू द रॉन्ग साइड, सो ही इज चेस्टाइजिंग यू। सो चेस्टाइजमेंट शुड बी सीन एज अ साइन ऑफ द लव ऑफ दैट पर्सन। कोई आपसे इतना प्रेम करता है कि अगर आप गुमराह ना हो जाए, इसे बचाने के लिए आपको डांट रहा है, वो तो यह उसके प्रेम का प्रतीक होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स एंगर इज नॉट द ओनली साइन ऑफ लव, हमें हमारा प्रेम, अगर हम किसी को डांटते भी हैं तो उसका हमारे प्रति, हमारा उसके प्रति प्रेम है दूसरे पद्धतियों से पहले हमने कई बार प्रकट किया होना चाहिए, जिससे अगर नहीं किया है तो फिर वो क्रोध के कारण वो रिश्ता टूट सकता है। तो पर अधिकांश रूप से जब हम क्रोध होते हैं वो रजोगुण के कारण होता है, तो उसके कारण क्रोधित न होना ही अच्छा है। पर यह हमारे लिए है, क्या दूसरा कोई क्रोध होता है तो हमें सोचना चाहिए कि वो उनको मेरे इतनी चिंता है इसलिए वो क्रोध हो रहे हैं, पर मैं क्रोधित हो गया तो नहीं सोचा, मुझे तुम्हारे लिए इतनी चिंता है इसलिए मैं क्रोध हो रहा हूं। तो लक्ष्मण का क्रोध है यह उनके उनके भक्ति, उनके ऋषि राम की जो दृढ़ भक्ति है उसका प्रत्यक्ष है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि लक्ष्मण इतने, लक्ष्मण इज शॉर्ट टेम्पर्ड, लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आ जाता जल्दी, नहीं, वो उनके गुस्सा उनके प्रेम का प्रतीक है। और वास्तव में आगे जाते हैं जब सीता माता का हरण हो जाता है और प्रभु श्री राम सब जगह ढूंढ रहे हैं और कहीं नहीं मिल रहे, गरुड़ और बहुत ही दुखी और क्रोधित हो जाते हैं वो। और प्रभु श्री राम तभी अपना ब्रह्मास्त्र निकालते हैं और वो कहते हैं अगर मैं सीता को ढूंढ नहीं पाऊंगा, अगर जगत में सीता ढूंढ गई है तो मैं संपूर्ण जगत का संहार कर दूंगा इस ब्रह्मांड को छोड़ के। और बहुत क्रोध हो जाते हैं प्रभु श्री राम। तभी लक्ष्मण बोलते हैं प्रभु श्री राम को कि इस प्रकार का क्रोध आपको शोभा नहीं देता है, सारा विश्व दोषी नहीं है आपके सीता से विरह के कारण नहीं है, वो दोषी तो केवल एक राक्षस रावण है, तो हमें उसे ढूंढना चाहिए और उसका वध करना चाहिए। मैन ऑफ योर कैलिबर नेवर गिव वे टू अनकंट्रोल्ड एंगर अगेंस्ट दोज हु आर नॉट टू बी ब्लेम्ड। लक्ष्मण बताते हैं आपके दर्जे के व्यक्ति जो दोषी नहीं है उनके प्रति कभी क्रोधित नहीं होते हैं, तो उस तरह से वे प्रभु श्री राम को भी शांत करते हैं। तो मैं प्रभु श्री राम का भी ऐसे नहीं है कि हमें समझे कि क्रोध है, यह उनके सीता के प्रति जो उनका प्रेम है उसका प्रतीक है। और बाद में आगे जब उनकी भेंट सुग्रीव से होती है और प्रभु श्री राम की योजना से वली का वध होता है और सुग्रीव राजा बन जाते हैं, तो तभी बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। तो चार महीने के लिए बरसात इतनी होती है कि कहीं ढूंढना नामुमकिन है होता है। तो फिर सुग्रीव और राम लक्ष्मण ये योजना बनाते हैं कि चार महीने के लिए हम तो रुकेंगे, उसके बाद में हम वानरों को भेज के सीता को ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो किष्किंध में एक पर्वत होता है, उसके ऊपर प्रश्रवण नाम की जगह में एक गुफा में जाके राम और लक्ष्मण रहने लगते हैं। और जब वहाँ पर रह रहे होते प्रभु श्री राम हमेशा सीता के बारे में चिंतन चल रहा था। Although she is far away from Lord Ram, his mind is not away from her. His mind is always with her. हमेशा उनके बारे में विचार चल रहा है, उनके बारे में बात करते हैं लक्ष्मण से, किस तरह से वो दिन गुजारते हैं। और चार महीने हो जाते हैं, बारिश बंद हो जाती है, सब जगह पंछी दूर दूर निकलते हैं, जानवर बाहर निकलते हैं और सुग्रीव का कोई नामो निशान नहीं है। और प्रभु श्री राम चिंता में पड़ जाते हैं, मायूस हो जाते हैं कि हमारा एकमात्र आशा सुग्रीव था और सुग्रीव क्यों नहीं आ रहा है। और जब ऐसा सोच होते प्रभु राम लक्ष्मण से कहते हैं कि शायद ये सुग्रीव अभी काफ़ी साल जंगल में तपस्या करने के बाद अभी जब राज्य का उसको ऐश्वर्य मिल गया है तो उससे वो मोहित हो गया है और ऐशो आराम में लग गया है और उसके कारण उसने जो हमें वादा किया था वो भूल गया है। क्या उसके अय्याशी में वो भूल गया है कि उसको जो कुछ मिला है वो हमने उस पर कृपा की है इसलिए मिला है? क्या वो भूल गया है कि जिस वाले को वो कभी भी हरा नहीं सकता था उसको मैंने एक तीर से मार डाला है? क्या वो भूल गया है कि वाले जिस रास्ते पे गया था वो रास्ता उसके लिए भी खुला है? क्या वो चाहता है कि मैं मेरा धनुष उठाकर उस पर वही तीर छोड़ जो उसके भाई पर तोड़ा हो? लक्ष्मण जाओ तुम उसके पास और उसको चेतावनी दो। तो प्रभु श्री राम का क्रोध देखकर लक्ष्मण और भी क्रोध हो जाते हैं। लक्ष्मण बोलते हैं ऐसे कृतघ्न व्यक्ति को चेतावनी देने की भी क्या फायदा है, उसको मैं सीधा वध कर दूंगा, अंगद को राजा बना दूंगा और अंगद हमें खोज में वध करेगा। तो प्रभु श्री राम लक्ष्मण का क्रोध देखकर थोड़ा शांत हो जाते और वो कहते हैं पहले हमें थोड़ा सौम्य मार्ग अपनाना चाहिए और सौम्य मार्ग से कुछ नहीं हुआ तो फिर हम क्रोध का हिंसा का मार्ग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले आप जाओ और सुग्रीव को हमारे मैत्री की याद दिलाओ और उसका जो वादा था उसकी याद दिलाओ, अगर नहीं मानता है तो फिर हम फैसला करेंगे क्या करना है। तो लक्ष्मण हाँ तो कह देते पर उनका क्रोध वैसे का वैसा ही होता है।
or a sea beach.
जब चार महीने बारिश खत्म हो जाते हैं तो किष्किंध में हनुमान देखते हैं कि सुग्रीव इंद्रिय भोग में लगा हुआ है और उसे अपना वादा बिल्कुल याद नहीं है. तो वो जाते हैं, उनको याद दिलाते हैं कि राम और लक्ष्मण को आप वादा दिया था, अगर आप वादा पूरा नहीं करेंगे तो वो क्रोध हो जाएगा आप पर. तो सुग्रीव बात सही है बोलते और बोलते हैं कि हमारे संदेशवाहकों को सारे विश्व भर में जहाँ जहाँ भी वानर रहते हैं उन सबको तुरंत जाके मुझे बुलाओ, यहाँ पे बुलाओ. वो कहो उन सब जहाँ भी वानर रह रहे हैं उन सब के प्रधान वानर योद्धाओं को तुरंत किष्किंध में आने का मेरा आदेश है. और 10,000 वानरों को वो सारे विश्व भर में भेजते हैं और कुछ ही दिनों में सारे विश्व भर से विशाल विशाल वानर जो कि पहाड़ों जैसे लग रहे थे, कुछ वानर जो इनमें 100 हाथियों के एक वानर में शक्ति थी, कुछ वानरों में 1,000 हाथियों की, कुछ वानरों में 10,000 हाथियों की शक्ति थी, ऐसे सब वानर किष्किंध में आ गए और सुग्रीव का इंतजार कर रहे थे. और इसी बीच सुग्रीव ने आदेश दे दिया और तुरंत वो वापस अपने कमरों में जाकर अपनी पत्नी रुमा और फिर वाले की पत्नी तारा, वे वानरों का जो मोरालिटी होती है, नैतिकता होती है, वो मानवों से अलग होती है. तो प्रभु श्री राम जब वाली का वध होता है वो तारा कहती है कि जिस तीर से तुमने वाली को मारा हो राम, उस तीर को आप मेरे सीने से भी डाल दो ताकि जहाँ मेरे पिता चले गए मैं चला जाऊँगा. तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि नहीं, यह ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तुम जो नैतिकता मानवों के लिए नहीं है वो वानरों के लिए नहीं है, और ऊपर से तुम्हारा पुत्र अंगद अभी छोटा है, उसे तुम्हें देखभाल करनी है. अंगद छोटा नहीं होता है पर माँ के लिए हमेशा छोटा ही होता है. तो और वानरों के नियमों के अनुसार अगर आपके पति नहीं है तो पति का जो भाई होता है वो आपका रक्षक बन जाता है, तो आप सुग्रीव के साथ रह सकते हैं. तो फिर सुग्रीव आदेश तो देता है पर तुरंत उसके बाद वापस वो इंद्रिय भोग में लग जाता है. और इसी बीच लक्ष्मण आता है पर्वत से नीचे और किष्किंध में जब प्रवेश करते हैं उनका तीर हाथ में है और वो जो स्ट्रैंगिंग द वो जो रस्सी होती है उसे जब खींचते हैं तो उससे बड़ा आवाज आता है. छोड़ते तीर नहीं छोड़ रहे होते पर वो धनुष की सिर्फ जो रस्सी को खींच कर छोड़ रहे होते. तो वो भीषण आवाज सुनकर कुछ वानर भयभीत हो जाते, भाग जाते इधर उधर, और कुछ वानर वो अपने शस्त्र उठा लेते हैं. किष्किंध को वो सोचते हैं कि वो पहचानते नहीं है लक्ष्मण कौन है, वो सोचते हैं कि हमें किष्किंध को लक्ष्मण से बचाना चाहिए, और वो लक्ष्मण पे आक्रमण करने के लिए तैयार होते हैं. और यह देखकर लक्ष्मण का क्रोध और बढ़ जाता है कि न केवल वे मदद नहीं कर रहे, ये वानर अभी मुझे आक्रमण कर रहे हैं. तो अपने धनुष पे तीर रख देते हैं और तभी दौड़ते दौड़ते अंगद वहां पे आ जाते हैं और अंगद सब वानर को शांत करते हैं और वो जाके लक्ष्मण के पैरों में गिरते हैं. अंगद आप इतने क्रुद्ध क्यों हो रहे हो? और अंगद क्योंकि छोटे होते हैं तो उनको देखकर लक्ष्मण थोड़े शांत हो जाते हैं, कहते हैं कि हे पुत्र, तुरंत जाकर सुग्रीव को बोलो कि मैं उनसे मिलने आया हूँ. तो अंगद दौड़ते दौड़ जाता है सुग्रीव के पास और जब दौड़ते हो जाते हैं तो सुग्रीव तारा रुमा और अनेक दासियों के साथ बैठे होते हैं और सोए होते और अंगद जाके उठाते लक्ष्मण आया है, पर सुग्रीव अभी तो सोए होते. फिर तभी आके बाकी सब वानर आते हैं और लक्ष्मण बहुत क्रोध में है और बड़ा हल्ला उल्ला होता है. तब सुग्रीव उठ जाते हैं, और बोलते लक्ष्मण यहाँ पे आया है. तो सुग्रीव बोलते आए तुमने दरवाजे पे क्यों, रास्ते क्यों रखा, उनको तुरंत लेके आओ, उन्हें उतना आदर देना चाहिए जितना आप मुझे देते हो या वली को देते हो, तुरंत उनको लेके आओ. तो अंगद और हनुमान दौड़ते दौड़ जाते हैं और लक्ष्मण को किष्किंध में लेके आते हैं. तो किष्किंध ये जो वानर है ये साधारण बंदर नहीं है. वानर मतलब वो बड़े शक्तिशाली है और दे आर दिस वानरस आर मोर पावरफुल देन ह्यूमंस एंड लेस देन द सेलेस्टियल्स एंड द गॉड्स. वो एक विशेष योनी है. तो उनका जो किष्किंध होता है बहुत ऐश्वर्यशाली राज्य होता है, उसमें महल होते हैं और जो वानरों के प्रमुख होते हैं उनके अपने अपने रत्नों से जड़ित महल होते हैं. और सबसे बड़ा महल होता है सुग्रीव का, राजा का, जिसमें पहले सुग्रीव रहते थे, बाद में वली रहते थे और बाद में भी सुग्रीव रह रहे थे. और फिर जब लक्ष्मण वहाँ पे आते हैं तो वहां पे उनको कुछ मधुर रमणीय संगीत का आवाज सुनता है जो कि सुग्रीव के कमरे से आ रहा है। तो यह सुनकर लक्ष्मण पुनः तुरंत क्रोधित हो जाते हैं पूरा, कि यहाँ पे वहाँ पे राम इतने दुखी है सीता के विरह में और यहाँ पे सुग्रीव भोग कर रहा है, और वो तुरंत अपना धनुष को ट्वैंग करते बजाते हैं। जब बजाते हैं तो सुग्रीव तुरंत अपने होश में आते हैं, वो कहते हैं कि तारा से कहते हैं कि हे तारा तुम जाओ और लक्ष्मण को समझाओ, अगर एक स्त्री को देखेगा तो वो क्रोधित नहीं होगा, अगर मैं जाऊँगा तो मुझ पर क्रोधित हो जाएगा वो। फिर तारा जाती है और अपने सिर पे वस्त्र के और लक्ष्मण जो के प्रणाम करते हैं। तो लक्ष्मण जब तारा को देखते हैं तो वो थोड़े तो शांत हो जाते हैं और नीचे देखकर कहते हैं कि कहाँ है सुग्रीव। तो तारा कहते बड़े मधुर नम्र भाव से, आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो, सुग्रीव तो बाद में अंत में एक बंदर ही है और बड़े बड़े ऋषि मुनि भोग में फंस जाते हैं तो बंदरों का क्या कहना।
तो फिर
हाँ फिर उसको अंदर लेके जाते हैं तो वहां पे सुग्रीव रुमा और बाकी सब दासियों के साथ बैठे होते हैं। तो वह देखकर लक्ष्मण तुरंत अपना धनुष वापस हो जाते हैं। तो यह आवाज सुन के सुग्रीव तुरंत उठ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं, अटेंशन जैसे बोलते हैं। तो फिर वो सुग्रीव वहां पे तारा कहते हैं कि आप इतने क्रोध होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही सुग्रीव राजेश्वर में रह रहे हैं पर वो अपना वादा नहीं भूले हैं, उन्होंने पहले ही अपने संदेशवाहकों को भेजा है और वानर अभी सारे जगह से आ रहे हैं। और वास्तव में रावण ने मुझे वली ने मुझे बताया था कि रावण के पास कोटि कोटि राक्षस हैं, तो उनसे अगर युद्ध करना है तो हमें कोटि कोटि वानर चाहिए। तो सब वानर योद्धाओं को हम सुग्रीव विश्व भर से ला रहे हैं, तो आप क्रोधित मत होइए। तो इसके पहले जब लक्ष्मण क्रोधित होते तो सुग्रीव से कहते हैं कि इनग्रैटिट्यूड इज द वर्स्ट ऑफ ऑल सिंस, कृतज्ञता ये सब पापों में से सबसे बड़ा है, क्योंकि वे कहते हैं कि अगर किसी को आप पे कुछ फेवर करने आपके लिए कुछ एहसान करने की जरूरत नहीं है और अगर वो आप पे एहसान करता है और उसकी उसके बदले में वो आपसे कुछ अपेक्षा करता है तो, और अगर आप नहीं करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि यू आर नॉट कॉन्शियस ऑफ व्हाट अदर्स हैव डन फॉर यू, आपने क्या आपके लिए क्या दूसरों ने किया है वो आपको चेतना नहीं है, तो इसीलिए वह एक पाप है। तो भी सुग्रीव बोलते नहीं आई एम नॉट अनग्रेटफुल, मैं कृतज्ञ हूँ मैंने ये सब किया है। और फिर लक्ष्मण शांत हो जाते हैं। तो जो सुग्रीव है हम जानते हैं महान भक्त हैं और हम बाद में देखते हैं कि जब युद्ध होता है तो कितने वीरता से युद्ध करते हैं, पर ये सुग्रीव के उदाहरण से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ में सीखने को मिलती है कि इवन अ सिंसियर डिवोटी इफ़ पुट इन टेम्पटिंग सिचुएशंस में फॉल प्रे टू द टेम्पटेशन। इवन एक प्रामाणिक भक्त भी क्यों ना हो अगर वो माया के चंगुल में चला जाता है वहाँ पे या वहाँ पे पड़ा जाता है तो फिर वहाँ पे वो भी फंस सकता है। सो वन शुड नॉट ट्रस्ट वन सिंसियरिटी ओवर वन सर्कमस्टेंसेस, वन शुड नॉट ट्रस्ट, ऐसे कठिन परिस्थितियों में जाकर माया से भरे हुए परिस्थितियों में जाकर हमें सोचना चाहिए कि मैं बड़ा प्रामाणिक भक्त हूँ कुछ नहीं होगा मुझे। जानते हैं कि जो ओबेशा जब हरिदास ठाकुर के पास आई थी तो हरिदास ठाकुर अपना जप कर रहे थे, पर ऐसे नहीं कि हरिदास ठाकुर वो वेश्या के अड्डे में गए उसका उद्धार करने के लिए, नहीं। अ डिवोटी नेवर चैलेंजेस माया, अ डिवोटी नेवर चैलेंजेस माया। पुणे में एक तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय गुरु है जिनकी जिनकी फिलॉसफी है कि संभोग से समाधि। तो ये व्यक्ति एक जीवन कहानी बड़ी विचित्र है, वो व्यक्ति पहले ब्रह्मचारी था, उसका बड़ा गर्व था कि मैं ब्रह्मचारी हूँ और कोई भी सुंदर स्त्री कितने भी आकर्षक क्यों ना हो वो मेरे साथ रात भर रह सकते हैं मुझे कुछ प्रभाव नहीं होगा। तो एक बॉलीवुड के फेमस हीरोइन ने उसका चाय चुनौती स्वीकार की और एक रात वो उसके साथ था और नेक्स्ट मॉर्निंग उसका फिलोसॉफी चेंज हो गया
ब्रह्मचर्य से संभोग से समाधि उसका फिलोसॉफी बन गया.
और डिवोटी शुड नेवर चैलेंज माया. को ये सोचना चाहिए कि मैं इतना शक्तिशाली हूं कि मैं माया को चुनौती दे सकता हूं. बाइबल में एक प्रसंग आता है कि जब जीसस सब लोगों को बता रहे होते कि भगवान आपके संरक्षण करेंगे, तो तभी जो डेविल सैतान आता है और वो जीसस को एक पहाड़ के ऊपर ले जाते हैं और फिर पहाड़ से नीचे दिखाते हैं, बहुत नीचे खाई होती है. तो तुम कहते हो भगवान सबको संरक्षण करेंगे, अगर तुम यहाँ से गिरोगे तो तुम्हें भगवान संरक्षण करेंगे क्या? हाँ जरूर करेंगे. तो बोले तो कूदो यहाँ से, देखते हैं तुम्हारे भगवान संरक्षण करते हैं क्या. इस बोलते हैं मैं नहीं कूदूंगा, अगर आप मुझे ढकेलोगे तो भगवान मेरा संरक्षण करेंगे. सो व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज दैट अ डिवोटी डज नॉट डिमांड दैट कृष्णा शुड सर्व एंड प्रोटेक्ट मी. भगवान कि ऐसे नहीं कि भगवान मेरे सेवक है और भगवान को मेरी रक्षा करनी चाहिए. मैं भगवान का सेवक हूँ और भगवान की सेवा करते समय अगर कोई तभी प्रलोभन आ गए, कोई खतरा आ जाएगा तो भगवान मेरा संरक्षण करेंगे. पर ऐसे नहीं है कि मैं खुद खतरे में जाऊं और फिर पतन हो जाए फिर बोलो भगवान आपने मेरा संरक्षण नहीं किया, ऐसे नहीं है. तो और जो लक्ष्मण है वो गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम जानते हैं लक्ष्मण गुरु तत्व है. तो जब प्रामाणिकता भी भले ही क्यों ना हो, पर अगर हम भौतिकवादी परिस्थिति में चले जाते हैं, प्रलोभन के भी चले जाते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारा कर्तव्य क्या है. हमने दीक्षा ली है तो हमने गुरु से कुछ व्रत किया है, कुछ वादे दिए, वो सब भूल जाते हैं. तो फिर गुरु या उनके प्रतिनिधि हमारे जीवन में आते हैं. एंड जैसे लक्ष्मण अपना तीर बजा अपने धनुष बजा रहे थे, वैसे गुरु डांटते हैं, याद दिलाते हैं हमको. एंड देन वी कम बैक टू आवर सेंसेस. तो इसीलिए कि सिंसियरिटी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर इंटेलिजेंस. सिंसियरिटी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर इंटेलिजेंस. मतलब क्या कि जरूर हमें प्रामाणिकता चाहिए. प्रभु जी बोले प्रामाणिकता के बिना हम भक्ति नहीं कर सकते हैं, पर केवल प्रामाणिकता सफिशियंट नहीं है. प्रामाणिकता के हमें बुद्धि से देखना चाहिए कि मेरा सामर्थ्य क्या है, मैं कहाँ तक प्रचार कर सकता हूँ, मैं कितने हद तक माया से सामना कर सकता हूँ. अगर एक भारतीय सैनिक है वो कहता है हाँ मैं बहुत प्रेम करता हूँ भारत माता से, इसलिए संपूर्ण पाकिस्तानी सेना आई है, मैं जाके उससे सामना करूँगा, सिंसियर है, पर कुछ नहीं होने वाला है उससे. सिंसियरिटी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर इंटेलिजेंस. बुद्धि का इस्तेमाल करना है और हमें कैसे प्रतिकार करना है. प्रतिकार करने का भाव अच्छा है, पर कैसे प्रतिकार करना है यह हमें बुद्धि से देखना है. बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम कभी कभी प्रलोभित हो सकते हैं. तो इसीलिए एक बार एक भक्त बता रहे थे प्रभुपाद जी एक बार पूछ रहे थे वॉट इज रिक्वायर्ड टू एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस. सिंसियरिटी एंड इंटेलिजेंस. ऑफकोर्स एक तरह से हम देख सकते हैं कि अगर प्रामाणिकता होगी तो भगवान बुद्धि भी देंगे हमको. भगवान जैसे कहते हैं भगवद्गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में तेषाम, आप बोल आप शायद जानते हैं श्लोक, तेषाम सतत युक्तानाम, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते. भगवान कहते हैं कि अगर आप प्रामाणिकता से भक्ति सत्य के साथ मेरी सेवा कर रहे भजताम प्रीतिपूर्वकम तो जो भी बुद्धि लगेगी मैं आपको बुद्धि दूंगा जिससे कि आप मेरे पास वापस आ सकते हैं. तो एक तरह से कहेंगे तो अगर हमें प्रामाणिकता है तो जरूर भगवान बुद्धि देंगे हमें. बट प्रॉब्लम क्या है, ऑफन वी एज्यूम दैट वी हैव सिंसियरिटी विदाउट चेकिंग वेदर वी हैव इट ऑर नॉट. हम सोचते हैं मेरे पास मैं प्रामाणिक हूँ ही ना, आप क्यों शक करते हैं, मैं प्रामाणिक हूँ. बट एक्चुअली माया कितनी शक्तिशाली हमें पता नहीं है और इसलिए वी शुड नॉट एज्यूम दैट वी आर सिंसियर. वी शुड एज्यूम दैट वी आर वीक एंड वी नीड प्रोटेक्शन. हमें हमेशा भक्तों के संग में रहेंगे तो माया के प्रलोभन से हम बच सकते हैं. अभी सुग्रीव जो थे वो भक्त है पर क्या है, भक्तों के संग में नहीं थे, वो इंद्रिय विषयों के संग में थे. तो क्या हो गया, भोग में फंस गए. तो इसीलिए भक्तों के संग में रहे तो दैट प्रोटेक्ट्स एंड इंक्रीजेस आवर सिंसियरिटी. हम जो प्रामाणिकता है, जरूर प्रामाणिकता है, अगर नहीं होती तो हम अभी भक्ति नहीं होते, पर जो प्रामाणिकता है वो बढ़ती है जब हम भक्तों के संग में रहते, और जो है वो सुरक्षित रहती है. फिर बाद में जब लक्ष्मण प्रभु श्री राम के साथ लंका की ओर जाते हैं और लंका पे आक्रमण होता है, तो ऑफकोर्स इससे पहले तो एक प्रसंग है. मैं सुना कि पिछले बार जब गौरांग प्रभु आए थे उन्होंने इससे विस्तारित रूप में बताया था कैसे लक्ष्मण जब सेवा कर रहे थे तो जब सीता चिंतित हो गई, कैसे कि राम खतरे में है, तो उन्होंने बोला कि आप जाओ उन्हें बचाने के लिए. लक्ष्मण बोले राम को क्या खतरा हो सकता है, सारे विश्व को खतराओं से वो बचाते हैं, उन्हें क्या खतरा हो सकता है. नहीं नहीं उन्हें खतरा है, तुम जाओ. तो कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी लक्ष्मण राम प्रभु राम ने मुझे आपका संरक्षण करने को बोला है. तभी प्रभु राम के प्रेम के कारण इतनी उद्विग्न इतनी चिंतित हो गई कि सीता माता उन्हें समझ में नहीं आया क्या बोल रही है. और वो बोले, उन्होंने लक्ष्मण के चरित्र पर आरोप लगाया, बोले कि तुम मेरा भोग करना चाहते, इसीलिए तुम राम का रक्षण नहीं करना चाहते, लेकिन राम का वध हो जाएगा तो तुम मेरा भोग कर सकते, पर तुम कभी मेरा भोग नहीं कर सकते. जो शब्द थे वो लक्ष्मण को तीर के समान उनके हृदय के आर पार हो गए. और लक्ष्मण बोले, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, जो आदत प्रभु श्री राम के प्रति है मेरे मन में वो आपके प्रति है, पर अगर तुमने ऐसे कहा है तो मैं जाऊँगा. फिर लक्ष्मण रेखा बनाया चले गए. और जब वो जंगल से जा रहे थे दौड़ते दौड़ते, तो प्रभु श्री राम दौड़ते दौड़ते उधर से आ रहे थे, तुमने सीता के क्यों छोड़ दिया अकेला. तो अभी लक्ष्मण वाज स्टिल नर्सिंग द वुंड ऑफ सीताज वर्ड्स, सीता के शब्दों के कारण जो घाव हुए थे उनके हृदय, वो भी उसे सहन कर रहे थे, और ऊपर से प्रभु श्री राम भी डांट रहे थे. तो किसी ने बताया उनको क्या हुआ था, तो प्रभु श्री राम बिल्कुल उससे शांत नहीं बोले, वुमन आर नोन टू बी सेंटिमेंटल बट वाई डिड यू बिकम सेंटिमेंटल. स्त्रियां तो होती है भावुक, तुम क्यों भावुक बन गए. और इस तरह से सीता ने उन्हें डांटा, राम ने उन्हें डांटा. फिर लक्ष्मण कह सकते आई रिजाइन. लक्ष्मण कह सकते इनफ इज इनफ. मैं नहीं कह सकता क्यों इतना सहन करूं. एक्चुअली ये बहुत बड़ी चुनौती होती है भक्ति में. सबसे पहले हमारे मिथ्या अहंकार के कारण हम किसी की सेवा करना चाहते ही नहीं है, हम चाहते हैं कि दूसरे मेरी सेवा करें. पर अगर हम सेवा करते भी है किसी की, और अगर जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वह हमारे बारे में कुछ गलत विचार करता है, इफ दैट पर्सन गेट्स अ मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट अस, देन वी फील व्हाई शुड आई सर्व यू. अगर आप मुझे गलत समझते हैं तो मैं क्यों आपकी सेवा करूं. तो ये बहुत बड़ी चुनौती है भक्ति के मार्ग में कि अगर हमें कोई गलत समझता है तभी भी भक्ति में सेवा करते रहना. ये टेम्पटेशंस जो है, प्रलोभन है, वो एक एक समस्या है एक, पर उससे भी बड़ा है कि जब हम जिनकी सेवा कर रहे हैं वो अगर हमें गलत समझते हैं कभी कभी, तो वास्तव में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि डिवोटीज आर मिसअंडरस्टैंडिंग मी, वी शुड थिंक मे बी आई एम मिसअंडरस्टैंडिंग डिवोटीज. और अधिकांश रूप से वही होता है कि हम ही दूसरों को गलत समझते हैं. पर लक्ष्मण ये उदाहरण देते हैं कि ये एक्सट्रीम उदाहरण देते हैं कि भले ही जिनकी हम सेवा कर रहे हैं वो हमें गलत समझे, फिर भी हमें सेवा में बरकरार रहना चाहिए. इट्स अ ग्रेट चैलेंज एंड इट्स नॉट ईजी. ऑल्दो मैं ये बोल रहा हूँ, पर जब ऐसी परिस्थिति आती है तो फिर हमारा जो मिथ्यांकार है जो हम दबा के रखते हैं पूरे प्रवाह के साथ ज्वालामुखी के समान फट जाता है वो, और बहुत मुश्किल होता है. बट लक्ष्मण इलस्ट्रेट दैट कि भले ही कितना बड़ा कितने भी बड़ी गलत फहमी के उसके वहाँ आ जाए, फिर भी हमें सेवा बरकरार रखनी चाहिए. फिर बाद में जब युद्ध शुरू हो गया तो रावण ने इंद्रजीत को भेजा, और इंद्रजीत पहले जब आए तो उसने एक योजना बनाई जिससे कि वो अदृश्य कुछ मंत्र बोल के अदृश्य हो गया, और अदृश्य रूप से राम और लक्ष्मण ने प्रहार करके उन्होंने उनको नागपाश से बांध दिया और वे बेहोश हो गए. और फिर तभी ये बाकी से बांध सोचा कि कैसे बचे, उनको नाक काट रहे हैं और सब जगह वे बेहोश हो गए, ऐसे लग रहे मृत हो गए. तो तभी गरुड़ जी वहाँ पे आ गए, और जैसे ही गरुड़ जी को देखा तो वो सब नाग भाग गए, और इंद्रजीत ने जाके बोला था कि राम लक्ष्मण का वध हो गया, और रावण अय्याशी कर रहा था, और तभी उनको सुना जय श्री राम, और फिर वो देखने लगे क्या हो गया। तो इंद्रजीत भी देखने लगे क्या हो गया, वो मर गए थे वापस जीवित कैसे हो गए। तो उसके बाद में रावण ने कुंभकर्ण को भेजा, अतिका आया, बाकी सब लोगों को भेजा, फिर बाद में इंद्रजीत को वापस भेजा। और दूसरी बार भी जब इंद्रजीत आए तो फिर इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, और ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल अदृश्य रूप के ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करके उसने हजारों हजारों वानरों को मार डाला, और फिर वो ब्रह्मास्त्र का प्रहार करके वो राम और लक्ष्मण को भी घायल करने लग गए। राम और लक्ष्मण वास्तव में ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार कर सकते थे एक और ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करके। ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार केवल ब्रह्मास्त्र से किया जा सकता है, पर दो ब्रह्मास्त्र के टक्कर से संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश हो सकता है, और वो न चाहने के कारण प्रभु श्री राम बोले कि हम इसका प्रतिकार नहीं करेंगे, और उसके कारण उस अस्त्रों से भी वो बेहोश हो गए। और तभी हनुमान जी ने जाके पर्वत से संजीवनी और आदि जड़ी बूटियां लाई और उनको बचाया, और वापस एक बार इंद्रजीत आके बोला कि इस बार तो राम और लक्ष्मण का वध हो गया है। और फिर रावण हैड अ पार्टी, बहुत अय्याशी की, और फिर सो रहा था, और उसी बीच हनुमान जाके लेके आए जड़ी बूटियां, और राम और लक्ष्मण को पुनः जागृत किया, सभी वानरों को जागृत किया, और फिर रावण सोया हुआ था, और तभी वानरों ने लंका पे आक्रमण करके दीवार तोड़ के दीवारों को लांघ के लंका में प्रवेश कर लिया, और सारे लंका में हाहाकार हो गया, और रावण उठ गया और वापस आश्चर्यचकित हो गया, दो बार मर गए थे वापस जीवित कैसे हो गई राम और लक्ष्मण। और तो इंद्रजीत ने बोला इस बार वो बचने नहीं चाहिए, दिस टाइम दे शुड नॉट लिव। तभी इंद्रजीत पुनः आक्रमण करने के बाहर आ गया, पुनः अदृश्य रहकर वो प्रहार करने लग गया, और इस बार प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने फैसला कर लिया था कि अभी से सहन नहीं करना है, तो उन्होंने शब्दभेदी अस्त्र लिया। शब्दभेदी अस्त्र ऐसा अस्त्र होता है कि वो अदृश्य शत्रु पे भी आक्रमण कर सकता है, और उससे उन्होंने लक्ष्मण इंद्रजीत को बड़ा घायल कर दिया। और इंद्रजीत यह देखकर कि और वो उसका वध करने वाले थे, तो इंद्रजीत जाकर दौड़ भाग गया वहाँ से। तो सोचा था कैसे अभी, इंद्रजीत ने एक अपने दिमाग से योजना बनाई, उसने एक सीता का मायावी रूप तैयार किया, और सीता का मायावी रूप लेकर अपने रथ में पुनः आ गया, इस बार दृश्य रूप में। और जैसे ही हनुमान ने देखा कि इंद्रजीत हवा से आ रहे हैं, तो हनुमान जी बड़ा पत्थर, पहाड़ जैसे पत्थर उठाया और उसकी ओर फेंकने वाले थे, तभी उन्होंने देखा कि उसके साथ एक स्त्री है कोई, तभी और जब वो देख रहे थे उन्होंने देखा कि वो सीता माता है, और इंद्रजीत उस पर प्रहार कर रहे थे, मार रहे हैं, उसके बाल खींच रहे हैं, और उन्होंने अपनी तलवार उठाई, इंद्रजीत उन्होंने तब तलवार उठाई सीता को मारने के लिए। तो हनुमान बोले किस प्रकार के क्षत्रिय हो तुम, दूसरे वानरों से युद्ध करने, क्षत्रियों से युद्ध करने तुम असहाय स्त्री का वध करते हो, तुम्हें नैतिकता नहीं है क्या। तो इंद्रजीत हंसने लग गया, मुझे कोई नैतिकता का भय नहीं है, अभी देखो मैं जिस सीता के लिए तुमने युद्ध किया है मैं उसे क्या करता हूँ। और तलवार से वो सीता का जो रूप था उसे दो रूप में काट दिया। और जब हनुमान जी ने देखा, ये तो इतने क्रुद्ध हो गए, वो सब राक्षसों टूट पड़े और हजारों की संख्या में राक्षसों को मारने लगे, और इंद्रजीत ऊपर से वानरों का वध कर रहा था। तो हनुमान जी ने बड़ा पहाड़ उठाया और पूरी शक्ति के साथ इंद्रजीत की ओर फेंका, इंद्रजीत हंसते हंसते ऊपर उठ गया और पहाड़ का टुकड़ा नीचे गिर गया। और यह देखकर हनुमान जी पूरा हताश हो गए, वानरों से बोले कि रुको अब युद्ध करने का कोई फायदा नहीं है, कि जिसके लिए हम युद्ध कर रहे थे वह अभी नहीं रही, माता सीता का इसने वध कर दिया है। और हनुमान जी के आंखों से आंसू आ रहे थे, और सब वानर रुक गए आक्रमण करना, और यह देखकर इंद्रजीत ने भी राक्षसों को रोक दिया और इंद्रजीत गायब हो गया। और जब हनुमान जी गए और उन्होंने जो हुआ जो देखा उन्होंने वो प्रभु श्री राम को बताया, तो वहीं पर राम इंद्र प्रभु भगवान मूर्छित हो गए और लक्ष्मण के आंखों से आंसू आने लग गए। पानी से उन्होंने प्रभु श्री राम को पुनः जागृत किया और वो कहने लग गए कि कैसे संभव है ये, किस प्रकार की नियति है ये, कि अगर ये रावण इतना निष्ठुर है फिर भी उसे कुछ नहीं, और आप इतने वर्चुअ से पुण्यवान हो फिर भी आप पे आया है, तो आप पे ये तो वो ये अन्याय हुआ है। और प्रभु श्री राम इतने मूर्छित थे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, और सारे वानर हताश होकर रो रहे थे, जमीन पे गिरे थे और तभी विभीषण वहां पे आ गए। और जब उन्होंने सब वानरों को हताश देखा, परशुराम को मूर्छित देखा, तो बड़ी चिंता में होकर उन्होंने लक्ष्मण को पूछा क्या हुआ। तो लक्ष्मण कुछ बोल नहीं पा रहे थे, फिर हनुमान जी ने बताया क्या हुआ है। तो विभीषण बड़े गंभीरता से सोचने लगे और फिर उन्होंने कहा कि ये सीता के वध का जो समाचार है ये इतनी ही नामुमकिन है जितने सागर का सूख जाना है। क्यों? क्योंकि रावण के हृदय में सागर के समान काम वासना है और वो काम वासना सीता के लिए ही है, और जैसे वो सागर सूख नहीं सकता है वो काम वासना सूख नहीं सकती, इसलिए रावण कभी सीता का वध करने नहीं देगा किसी को। वो सीता के लिए उसने सब युद्ध किया है क्योंकि वो सीता को भोग करने का लिए पागल है। तो ये इंद्रजीत की चाल है आपको फंसाने के लिए। और मैं जानता हूं अभी भी वो उसका एक बगीचा है निकुंभिल नाम का, वहां पे जाकर वो यज्ञ कर रहा है। अब ब्रह्मा जी ने उसे वर दिया है कि अगर वो यज्ञ उसने पूरा कर लिया तो उस यज्ञ पूर्ण करने के बाद जिससे भी युद्ध करेगा वह उसको परास्त कर सकेगा। तो आपकी शक्ति को देखकर वह युद्ध न करना चाहता है, वो यज्ञ करना चाहता है, और यज्ञ समय प्राप्त करने के लिए उसने ये चाल चली है, और ये चाल से वह आपको भ्रम में डालकर समय प्राप्त करके यज्ञ करना चाहता है। तो यह है जो इंद्रजीत की चाल है, जो है वास्तव में यह प्रत्यक्ष प्रमाण से जो हम किस तरह से गुमराह होते दिखता है। प्रत्यक्ष प्रमाण यानी जो हमें आंखों से दिखता है। वास्तव में जनरली स्पीकिंग माया एंटर्स थ्रू द आईज एंड कृष्णा एंटर्स थ्रू द ईयर्स फॉर द कंडीशन सोल। आंखों से क्या होता है, हमेशा माया प्रवेश करती है क्योंकि माया के सारे प्रलोभन है जो अधिकांश क्या है आंखों से दिखते हैं और उससे हम आकर्षित होते हैं। तो इफ वी सी विद आवर मटेरियल आईज वी विल फाइंड हंड्रेड्स ऑफ रीजंस टू बिकम डिस्करेज्ड इन आवर डिवोशनल सर्विस। अगर हम आंखों से देखेंगे तो क्या होगा, क्यों मैं भक्ति करूँ, ये ऐसे हो रहा है, वो वैसे हो रहा है, वो वैसे हो रहा है, भक्ति करने से क्या फायदा है। वास्तव में भगवद गीता में भी देखते हैं क्या है, जब अर्जुन अपने आंखों से देखते हैं तो क्या होते हैं, हताश हो जाते हैं। विसृज सरम चापम शोक संविघ्न मानस, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। पर जब भगवान से श्रवण करते हैं तत्श्रुणु, तो फिर यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, वो अपना धनुष पुनः उठा लेते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। ठीक उसी तरह से हम अगर केवल हमारे आंखों पर भरोसा करेंगे और जो भी देखेंगे तो उससे लगेगा कि इस दुनिया में इतना सारा भोग करने का मौका है, या इस मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ फिर भी मेरे जीवन में इतनी समस्या आ रही है, क्या भक्ति करने से क्या फायदा होता है। पर जब हम शब्द का दुनिया से श्रवण करते हैं तो विभीषण ने जब बताया क्या है, तो फिर यहाँ पर पुरुष राम और लक्ष्मण तो भगवान है पर वे जैसे नरलीला कर रहे हैं, तो वो हमें सिखाते हैं कि जो हमें आंखों से दिखते हैं उससे ज़्यादा हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। नो मैटर वॉट वी सी विथ आवर आईज वी शुड हियर फ्रॉम डिवोटीज बिफोर अराइविंग एट एनी जजमेंट। कुछ भी हमें दिखे, जैसे कि एक बार एक ब्राह्मण थे, वो नित्यानंद प्रभु का वेश देखकर बड़े, लक्ष्मण जी नित्यानंद प्रभु है गौरलीला में, वे बड़े विस्मित हो जाते हैं। नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु आदेश देते हैं वास्तव में कि आप अनेक आभूषण पहनो। तो कभी कभी वो ही वुड वियर अ डजन नेकलेसेस और सब मणियों के बने हुए 12 माला पहनते थे, और फिर उनके हाथों में कुछ माला होती थी, कुछ बैंगल जैसे होते ऑर्नामेंट होते थे, यहाँ पे ऑर्नामेंट होते थे, और ऐसे राजा के समान वो चलते थे। और एक बार उनको देखा तो फिर और ऐसे लगता था कि ये कौन राजा से जा रहा है, इनका ऐशो आराम है कैसे। एक ब्राह्मण ने उनको देखा, वो भी ब्राह्मण भी भक्त था, वो कहने लगे कि ये कैसे वैष्णव है, कैसे वैष्णव है, ये किस प्रकार का ऐशो आराम है, वैसे को सरल जगना चाहिए। तो फिर वो चैतन्य महाप्रभु के पास गए, वो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बताया कि नित्यानंद प्रभु ये अवधूत है। अगर नित्यानंद प्रभु को आप देखोगे कि वो किसी वेश्या के घर में जा रहे हैं तो भी आपको क्या सोचना चाहिए, वो इस वेश्या का उद्धार करने के जा रहे हैं। नित्यानंद प्रभु इज कम्प्लीटली ट्रांसेंडेंटल। तो वास्तव में हमें प्रत्यक्ष प्रमाण से हम देखें तो कई बार हम मोहित हो सकते हैं, तो इसलिए शब्द प्रमाण से। और फिर जब यह सुना राम और लक्ष्मण, तो विभीषण ने कहा कि जो वर मिला है इंद्रजीत को उसके साथ उससे एक और चेतावनी भी है कि अगर वो यज्ञ पूर्ण नहीं कर पाता है उस समय अगर कोई उसे आक्रमण करता है तो उसका वध हो जाएगा तभी, तो अभी हमें समय नहीं है, तुरंत आप लक्ष्मण को भेजो। और उन्हें कुंभल में जाकर इंद्रजीत का यज्ञ पूर्ण होने के पहले वध कर देगा। तो तुरंत लक्ष्मण चले गए और रामचंद्र भगवान ने आदेश दिया और लक्ष्मण हनुमान अंगद सुग्रीव सब प्रधान वानरों के सेनापतियों के साथ वे चले गए और कई मील दूर थी लंका के एक कोने में वो कुंभिल। और जब वहाँ पे इंद्रजीत यज्ञ कर रहा था और चारों ओर जो बगीचा था हजारों राक्षसों द्वारा सुरक्षित था, और जब वो वानर पहुंचे तो तुरंत राक्षसों पर आक्रमण कर दिया। राक्षस प्रतिकार करने लग गए पर वो अपेक्षा नहीं कर रहे थे आक्रमण की, अपेक्षा नहीं कर रहे थे इसलिए वो भयभीत हो गए। इतने भीषण आक्रमण इतने सारे वानरों के देखकर और चिल्लाए इंद्रजीत इंद्रजीत, और इंद्रजीत देखा कि इतनी वानर सेना आ गई है तो तुरंत अपने हमने आगे छोड़ दिया और अपने रथ में बैठकर आक्रमण करने लग गया, आक्रमण करने के लिए आ गया। और फिर हनुमान अंगद ये सब राक्षस टूट पड़े और इंद्रजीत बड़ा क्रोधित हो गया था, वो भी वानरों पर टूट पर वानरों का वध करने लगा हजारों हजारों की संख्या में। तब हनुमान जी बोले कि वानरों का क्यों वध कर रहे हो तुम, मुझसे युद्ध करो तुम। और ऐसे ही हनुमान जी की ओर मुड़ा तो तभी भीषण बोले कि अभी समय ज़्यादा नहीं है, अभी तुम इंद्रजीत का वध कर दो। तो लक्ष्मण ने तुरंत ललकारा उनको, लक्ष्मण ने ललकारा तो इंद्रजीत उनकी ओर मुड़े और फिर लक्ष्मण और इंद्रजीत में भीषण युद्ध शुरू हो गया। और इतना घमासान युद्ध था वो, धीरे धीरे लक्ष्मण ने इंद्रजीत को घायल कर दिया, पर इंद्रजीत ने भी लक्ष्मण को घायल कर दिया था। फिर लक्ष्मण ने इंद्रजीत के जो रथ था उस पे पांच विशाल शेर थे, तो फिर लक्ष्मण ने पांचों शेरों को घायल कर दिया और जो ये रथ ऐसे थोड़ा धीरे हो गया तो पांच वानर कूद कर वो शेरों पे गिर गए और शेरों को पीट कर उनको वहीं पे चटनी बना दिया उनका। और अभी इंद्रजीत कहीं घूम नहीं पा रहा था, हिल नहीं पा रहा था, तो अभी लक्ष्मण ने और आक्रमण किया और इंद्रजीत का धनुष को तोड़ दिया, उसको घायल कर दिया। और तभी इंद्रजीत अपने रथ से कूद गया और दौड़ते हुए चला गया और उसने वानरों से कहा तुम युद्ध करो मैं आ ही रहा हूँ, तो वो लंका में चला गया, दूसरा रथ दूसरे अस्त्र लेके वापस आ गया। और वापस जैसे युद्ध कर रहा था काफ़ी समय तक, घंटों तक युद्ध चल रहा था। रावण बताया गया कि लक्ष्मण और इंद्रजीत का युद्ध 3 दिन चला, दिन रात बड़ा भीषण युद्ध चल रहा था। फिर अंत में ऐसा लगा था कोई ऊपर का हाथ, नोबडी वाज गेटिंग द अपर हैंड। और फिर राक्षसी अस्त्र इंद्रजीत इस्तेमाल कर रहा था, कभी कभी वो सब ऐसे लग रहा था कि बड़े अग्नि का तूफान उनकी ओर आ रहा है। तो फिर वरुण अस्त्र छोड़ के बारिश लाकर उसका रोक देते थे। फिर तूफान आता था वायु का तो फिर लक्ष्मण एक पहाड़ बनाने वाला अस्त्र लगा उसको रोक देते थे। तो जो भी अस्त्र आए थे प्रतिकार कर रहे थे। फिर ऐसे ऊपर से सब देवी देवता है लक्ष्मण को आशीर्वाद देते थे, सब दानव असुर इंद्रजीत को आशीर्वाद दे रहे थे, उनके आशीर्वाद तो क्या फायदा है पता नहीं
पर आशीर्वाद दे रहे थे वो।
और फिर अंत में लक्ष्मण ने इंद्र अस्त्र लिया, इंद्र का जो अस्त्र होता है वो लिया और फिर वह मंत्र बोलते हुए उन्हें प्रभु श्री राम का स्मरण किया और कहा कि अगर राम हमेशा अपने व्रत में सत्य रहते हैं, अगर वो सत्यवान है तो मैं रामचंद्र भगवान का सेवक हूँ, कृपया मैं इस युद्ध में विजयी हो जाए। और उन्हें वो तीर छोड़ा, वो तीर इतना तेजी से गया कि इंद्रजीत कुछ करने के पहले ही सीधा इंद्रजीत का सिर काट के वो तो गिरा दिया। और जब इंद्रजीत का वध हो गया देखा तो सारे राक्षस भाग गए और भागते भागते वे रावण के पास गए। और जब रावण ने सुना कि आपका मेरा पुत्र इंद्रजीत वध हो गया तो वो वहाँ पे अपने सिंहासन से नीचे गिर गया बेहोश होकर। और फिर सारे वानरों ने जय जयकार किया लक्ष्मण का। और फिर जब लक्ष्मण वापस आए प्रभु श्री राम के पास, रामचंद्र भगवान ने उनका आलिंगन किया और विभीषण ने सारी कहानी बताई। और प्रभु श्री राम बोले कि आज आपने रावण का जो राइट हैंड है, रावण का यश का सबसे बड़ा स्रोत था, उसका आपने वध कर दिया है। What you have done is almost impossible to do. नामुमकिन कार्य वो आपने किया है और अभी रावण का अंत जल्दी ही आने वाला है। तो जो इंद्रजीत जो है ऐसे उसका नाम था, उसका पहले नाम था मेघनाथ, जब उसने इंद्र को हराया तो उसका नाम बन गया इंद्रजीत। जो इंद्रजीत था यह विशेष करके सॉर्सरी, सॉर्सरी मतलब माया, माया निर्माण करके शत्रु पे आक्रमण करके उसका वध करने का प्रतिकार। तो माया भी क्या करती है, माया फर्स्ट क्रिएट्स इल्यूजन्स एंड द इल्यूजन्स डिस्करेज अस एंड आफ्टर वी बिकम डिस्करेज्ड देन माया अटैक्स एंड डिफीट्स अस। तो ये इंद्रजीत भी ऐसे ही करते हैं। माया पहले क्या करती है, वो पहले इस तरह का, अगर हम भक्ति करें तो माया ऐसे नहीं बोलेंगे भक्ति क्यों कर रहे छोड़ दो उसको, ऐसे नहीं बोलती वो। कुछ तो भी ऐसे परिस्थिति आती है जिससे हम थोड़ा सा डिस्करेज हो जाते हैं, थोड़ा उत्साह कम हो जाता है। और जैसे ही हमारा उत्साह कम हो जाता है तो क्या है, माया का आक्रमण बढ़ जाता है। जब माया का आक्रमण बढ़ जाता है तो और उत्साह कम हो जाता है और फिर इवेंचुअली माया टेक्स अस अवे। तो लक्ष्मण जो है हमारे गुरु है, जितना हमारे गुरु के वाणी का हम श्रवण करते हैं, प्रभुपाद जी की वाणी का श्रवण करते हैं, तो उससे जो माया का प्रलोभन है वह निकल जाता है। जैसे कहते हैं इट इज सेड दैट माया कवर्स आवर इंटेलिजेंस एंड देन शी कवर्स द कवरिंग सो दैट वी डोंट नो वी आर कवर्ड। माया क्या पहले हमको मोह में डाल देती है, फिर बाद में एक दूसरा मोह डालती है जिसे हमको पता भी नहीं चलता कि हम मोह में हैं। जैसे अभी सारे भौतिकवादी लोग वो माया में है पर उनको पता ही नहीं माया में है। ऐसे थोड़ा सा नशा अगर किसी को होता है तो समझता है कि भाई मैं ज़्यादा पी लिया, थोड़ा भी कहीं गिर जाऊँगा कुछ हो जाएगा। पर जिसने बहुत पी लिया है वो गिर गया है, उसको ले रहे यहाँ पे ऐसे गटर में क्यों गिरा है, तो चल मैं तो लेके जाता हूँ, कहाँ गटर में गिरा हूँ मैं, दफा हो जाओ। ठीक है, उसी तरह से जब पहले माया हमारे बुद्धि को ढक देती है, उसके बाद में वो जो ढका है उसको भी ढक देती है, तो मैं समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल बाय हियरिंग द वर्ड्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु की वाणी को सुनकर जो माया जो आवरण ला रही है उसको हम निकाल सकते हैं। इसीलिए वेदांत सूत्र में अंत में, वेदांत सूत्र ये बहुत तत्व ज्ञान से भरा हुआ, न्याय से भरा हुआ शास्त्र है, पर उसके अंत में एक शब्द, एक सूत्र आता है। वो क्या सूत्र है, अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात। हमारी चेतना पे आवरण आ गया है माया के कारण, वो आवरण कैसे निकलेगा, शब्द के द्वारा, भगवान ने दी हुई दिव्य ध्वनि के द्वारा, अनावृत्ति शब्दात। तो इस तरह से अनेक और भी प्रसंग है, पर हम जानते हैं कि कैसे लक्ष्मण को वापस भगवान ने परीक्षा की, कैसे सीता के लिए उन्होंने वो अग्नि परीक्षा थी, और बाद में सीता को वाल्मीकि मुनि के जीवन आश्रम में जाने को बोला। पर वो है, हम कल सीता माता के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे आज। पर जो लक्ष्मण गुरु तत्व है वही चैतन्य नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं। जो लक्ष्मण आक्रमण करते हैं तीरों के साथ, बड़े क्रुद्ध होते हैं, वो नित्यानंद प्रभु क्या है, अकरोध परमानंद नित्यानंद राम, बिल्कुल क्रोध नहीं करते हैं। और वो क्या, लक्ष्मण जब क्रोधित होते हैं तो प्रभु श्री राम उनको शांत करना पड़ता है, पर चैतन्य महाप्रभु जब क्रोधित होते हैं तो नित्यानंद प्रभु उन्हें शांत करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु जगाई मधाई का वध करना चाहते हैं तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मैंने कुछ पुण्य किया है, मैंने कभी आपको प्रसन्न किया है मेरी सेवा के द्वारा, तो मैं उसके बदले में सिर्फ आपको एक भीख मांगता हूँ, ये दो जगाई मधाई का जीवन आप बख्श दो मेरे लिए। कहते हैं कि अगर आपको वध करना है तो आपको सबका वध करना पड़ेगा, कृपया आप जगाई मधाई का वध मत करो, पर उनमें जो पाप की मानसिकता है उसका वध करो। तो जैसे नित्यानंद प्रभु की कृपा से जगाई मधाई को प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु से हरिनाम मिला था, वैसे ही प्रभुपाद जी की कृपा से हमें हरिनाम मिला है। तो लक्ष्मण का जो तत्व है गुरु तत्व, वही प्रभुपाद और हमारे गुरु के प्रतिनिधित्व करता है। और जो गुरु के बारे में क्या बताया गया है कि वे वास्तव में, प्रभुपाद जी एक तात्पर्य बताते हैं, हम कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कोण भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद भक्ति लता बीच, जो भाग्यवान है वही भक्ति प्राप्त करता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कोई भाग्यवान कैसे बनता है, बोलते इट इज द गुरुज बिजनेस टू मेक अनफॉर्चुनेट सोल्स फॉर्चुनेट, गुरु ही हमें भाग्यवान बनाते हैं। तो जो गुरु के बारे में एक वंदना है उससे एक प्रार्थना का हम विल कंक्लूड। आप मेरे पीछे बहुत दोहराइए, संकीर्तनानंद रस स्वरूप, कीर्तनानंद रस स्वरूप, प्रेम प्रदान है खलु शुद्ध चित्तै, प्रेम प्रदान खलु शुद्ध चित्त संस प्रेम प्रदान